नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम में दर्ज वोटों का शत प्रतिशत मिलान वीवीपैट से कराने की मांग वाली याचिका खारिज की। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रांग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाए जाने की रिपोर्टों को खारिज किया। एनडीए नेताओं की लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले आज नई दिल्ली में बैठक। उच्चतम न्यायालय ने 2016 के कालेधन कानून को जुलाई 2015 से प्रभावी नहीं माने जाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एमसी मैरीकॉम असम में दूसरे इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उच्चतम न्यायालय ने चेन्नई स्थित टेक्नोक्रेट समूह की उस जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान ईवीएम में दर्ज वोटों का शत प्रतिशत मिलान मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बड़ी पीठ ने इस मामले की पहले ही सुनवाई कर आदेश दे दिया है। पीठ ने कहा कि वो प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। शीर्ष न्यायालय ने इस महीने के शुरू में 21 विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी जिसमें 50% ईवीएम वोटों का मिलान वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग में अधिकारियों से मिलकर ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराने के मुद्दे पर बातचीत करेगा। विपक्षी दलों की मांग है कि अगर किसी भी मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केंद्रों की ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराया जाए। इस बीच इन नेताओं की एक बैठक चल रही है जिसमें निर्वाचन आयोग के साथ होने वाली बातचीत के मुद्दे पर रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रांग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाए जाने की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। आयोग ने एक बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और विशेष रूप से गाजीपुर, चंदौली, डुमरियागंज और झांसी संसदीय क्षेत्रों में इन आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। बयान में कहा गया है कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सामने ही सील कर दी गई हैं और इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है। आयोग ने बताया है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम की निगरानी करने की अनुमति दी गई है और उनके प्रतिनिधि 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने कहा कि राज्य में सभी ईवीएम सुरक्षित हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के ईवीएम के बदले जाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि मामला गाजीपुर, चंदौली, झांसी और डुमरियागंज के कुछ नेताओं ने उठाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गाजीपुर जिले में बसपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने स्ट्रांग रूम केंद्र के सामने धरना दिया और आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया और लोकसभा सीट की हर विधानसभा से 5 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौके पर मौजूद रहने देने की प्रत्याशी की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। चंदौली में भी 35 ईवीएम मशीनों को जमा कराए जाने को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से हंगामा हुआ। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की गई मशीनें थीं, जिन्हें मतदान के दिन किन्हीं कारणों से वापस नहीं लाया जा सका था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झांसी और डुमरियागंज के मामले काफी पुराने हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। पार्टी प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश के कई हिस्सों से खबरें मिल रही हैं कि ईवीएम को अवैध रूप से इधर उधर किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव परिणामों की बृहस्पतिवार को घोषणा से पहले आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे। रात्रि भोज पर होने वाली इस बातचीत में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित गठबंधन के अन्य नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। असम में 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों पर लगभग 82% मतदान हुआ है। एक रिपोर्ट।
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश साहू के अनुसार 51 केंद्रों पर मतगणना होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में 14 टेबल लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। श्री साहू के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, लेकिन 14 केंद्रों पे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मतगणना के दौरान 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार इकाई गुवाहाटी द्वारा सुबह 9 बजे से मतगणना के दिन असमिया में विशेष चर्चा और प्रति घंटा बुलेटिन प्रसारित करेगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
मतगणना के दिन लोकसभा चुनाव के महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना दिलचस्प होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जागरूकता बढ़ाने और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे।
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर महाराष्ट्र में सिर्फ 13 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। राज्य में 1,19,95,027 मतदाता पहली बार मतदान हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टर डिजाइन किए, प्रशिक्षण मॉड्यूल चलाए, रेलवे स्टेशनों पर फ्लैश मॉब की व्यवस्था की और सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतों की गणना डाक मतपत्रों से शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम और फिर वीवीपैट की गणना की जाएगी। वीवीपैट की गिनती के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 5 यादृच्छिक मशीनों को चुना जाएगा और फिर कागज की पर्चियों को मशीन के वोटों के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
अरुणाचल प्रदेश में 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हुआ। इनमें कोलो रियांग विधानसभा क्षेत्र का नामपे और ताली विधानसभा सीट का गिम्बा मतदान केंद्र शामिल है। ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट में आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में विशेष प्रेक्षक और केंद्रीय पुलिस प्रेक्षक के तौर पर 2 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका नामंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस याचिका की सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि मतदान पूरा हो चुका है। पीठ ने याचिकाकर्ता रामू मांडी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। रामू पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
लोकतंत्र के महापर्व पर समाचार सेवा प्रभाग की खास पेशकश, विशेष जनादेश 2019। कौन पहनेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार? लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों का देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे ताजा हाल।
देहरादून से राघवेश पांडे, दिल्ली से आनंद कुमार।
आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से संजीव शर्मा।
सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
शिलांग से समीर वर्मा।
रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश सन्हा।
नागपुर से गौरी मराठे।
साथ ही विशेषज्ञ करेंगे चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल्स पर। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध। नवीनतम परिणामों के लिए देखें हमारी वेबसाइट www.newsonair.com और फॉलो करें ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दूरदर्शन ने भी 23 मई सुबह 6 बजे से चुनाव परिणामों के प्रसारण के लिए विशेष व्यवस्था की है।
राजनीति के मैदान सबसे बड़े घमासान के लिए जनमत की माटी से होगा राजतिलक। DD न्यूज पर देखिए सबसे बड़े रिपोर्टर्स नेटवर्क के साथ देश के हर मतगणना केंद्र से चुनाव परिणाम की सबसे सटीक और निष्पक्ष कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर आपको मिलेंगे स्पष्ट रुझान और सही नतीजे विश्वसनीय विश्लेषण के साथ। जनादेश 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर।
शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 2016 के कालेधन कानून को जुलाई 2015 से प्रभावी नहीं माना जा सकता। ये कानून कालेधन के आरोपियों पर मामला दर्ज करने और जांच से जुड़ा है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्व दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें आयकर विभाग को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी गौतम खेतान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था। खेतान पर कालेधन से जुड़ा मामला दर्ज है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकरोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
चुनाव परिणामों की लगातार 24 घंटे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें 23 और 24 मई को समाचार सेवा प्रभाग के विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम पर।
देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ताज़ा हाल।
स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ करेंगे चुनाव नतीजों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर सुन सकते हैं। ये प्रसारण YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
नवीनतम परिणामों के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com देखें और फॉलो करें हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
ये आकाशवाणी है। एमसी मैरीकॉम असम में दूसरे इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में मैरीकॉम का मुकाबला नेपाल की माला राय से होगा। 51 किलोग्राम भार वर्ग में ही भारत की निकट जरीन और अनामिका तथा 64 किलो भार वर्ग में अंकुशिता बोरो और ललिता आमने सामने होंगी। पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित और 75 किलोग्राम में मंजित पांघल अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। कल टूर्नामेंट के पहले दिन भारत के सभी 7 मुक्केबाजों ने शुरुआती मैच जीत लिए। चीन के नानिंग में सुदीरमन कप प्रतियोगिता के मिक्स टीम मुकाबले में भारत को ग्रुप 1D के शुरुआती मैच में मलेशिया से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु तथा मिक्स डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी अपने अपने मैच जीतने में सफल रहे, लेकिन पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा और पुरुष डबल्स में बी सुमित रेड्डी तथा मनु अत्री की जोड़ी, महिला डबल्स में पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी मलेशिया से हार गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोको विडोडो को इंडोनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और हमें सामूहिक रूप से लोकतंत्र की सफलता पर गर्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम में दर्ज वोटों का 100% मिलान वीवीपैट से कराने की मांग वाली याचिका खारिज की। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रांग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाए जाने की रिपोर्टों को खारिज किया। एनडीए नेताओं की लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले आज नई दिल्ली में बैठक। उच्चतम न्यायालय ने 2016 के कालेधन कानून को जुलाई 2015 से प्रभावी नहीं माने जाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।